Thank you. Vajrayanam Namo Loe Sauvasahunam Mangalam Bhagivani Viro Mangalam Gautamo Gani Mangalam Kunde Kundaryo Jai Dharmostu Mangalam Sarva Mangale Mangalyam Sarva Kalyani Karitum Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Shashanam Jainam Jaitu Shashanam Sarva Vyapik Chitrupa Sarupaye Paratmani Sopalabdhi Prasiddhaya Jnananandatmane Namah Shashwat Tirtha Dham Samet Shikhar mein ayojit और प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर स्वाध्याय की श्रृंखला का जो शिविर है उसके अंतर्गत आज अपन प्रवचन सार की पंच रत्न गाथाओं की विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले आज हमारे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री का तारीख के हिसाब से समाधि तिथि है। इस अवसर पर गुरुदेव श्री बहुत याद आते हैं। आज से ठीक 40 वर्ष पहले उनका इस भरत क्षेत्र से चिर वियोग हुआ और मुमुक्षु समाज अपने कर्णधार गुरुदेव श्री को खो बैठी। लेकिन गुरुदेव श्री का जो तत्व है, गुरुदेव श्री की जो रीति नीति है वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है और अनंत काल तक, पंचम काल के अंत तक खासतौर से अपन कहें तो ये अपने को तत्व ज्ञान का बोध गुरुदेव श्री के वाणी के माध्यम से मिलता रहेगा। गुरुदेव श्री ने जिस तरह समय सार परमागम को पाकर दिगंबर जैन धर्म को अंगीकार किया, उसी तरह गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार ग्रंथ को भी श्वेतांबर संप्रदाय में ही प्राप्त किया था। अभी इसी शिविर की स्वाध्याय श्रृंखला में पंडित अभय कुमार जी ने एक बात याद की थी कि जिस तरह हम समय सार वर्ष गुरुदेव श्री का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, प्रवचन सार ग्रंथ कब मिला गुरुदेव श्री को उसका भी हमको पता लगाना चाहिए और उसका भी शताब्दी वर्ष मनाना चाहिए। मैं उस बात की अनुमोदना करता हूँ। वास्तव में गुरुदेव का तो हर प्रसंग अपने को, जो जो भी प्रसंग मनाने का अपने को मौका मिले अपने को मनाना चाहिए। और उसके साथ ही जिनागम और जिनागम के साथ ही पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुनना अपने जीवन में एक उसको दिनचर्या का अंग बना लेना चाहिए। गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन सार परमागम पर भी अनेक बार प्रवचन किए हैं और विशेष रूप से जो इसका चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार है, मैंने पूरे प्रवचन सार में तीन अधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानुयोग सूचक चूली का। इस चरणानुयोग सूचक चूलिका की मैं विषय अति विस्तार में नहीं जाते हुए सीधी अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। ये जो चरणानुयोग सूचक चूलिका ग्रंथ है, इसको अधिकार है, इसको आचार्य देवसेन ने सम्यक चारित्र अधिकार कहा। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को ज्ञानाधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्यक चारित्र अधिकार कहा। इस तरह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में वर्णित विषय वस्तु को भली भांति समझ कर निज शुद्धात्मा के अवलंबन से जीव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। और उसके बाद जब उसको और अति वैराग्य अपनी परिणति में प्रवाहित होता है, अति वैराग्य आता है, तो उनको मुनि दशा अंगीकार करने का परिणाम आता है। ये अपन सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अष्टपाहुर में भी ये बात आई है और गुरुदेव श्री इस बात का बहुत बार अपने प्रवचनों में अष्टपाहुर के प्रवचनों में उल्लेख करते हैं। सम्यक दर्शन अगर धर्म का मूल है तो चरित्र वास्तव में धर्म है। सम्यक दर्शन होने पर उसी भाव से मोक्ष की गारंटी नहीं है। मोक्ष की गारंटी तो है, उसी भाव से मोक्ष की गारंटी नहीं है, लेकिन यदि सम्यक चरित्र की पूर्णता हो गई तो नियम से उसी भाव में जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्म स्वरूप की स्थिरता की दशा रूप चरित्र दशा, उसको वास्तव में आनंददायिनी दशा कहना चाहिए, क्योंकि स्वरूप स्थिरता का जो आनंद उन वीतरागी संतों को आता है वो अपने आप में अद्भुत है। कहीं श्री के वचनामत के हिसाब से कहें मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े। तो ऐसा जो चरणान योग सूचक चूलिका है इसके प्रारंभ में ही आचार्य देव ने कहा कि हे जीव, यदि तू सब दुखों से परिमुक्त होना चाहता है तो यह श्रामण्य को अंगीकार कर। इस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। और ये चर्चा होने के बाद उसमें बहुत सारा विषय आया है, इसका विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन खाली एक सूचना के रूप में आपको बताता हूं। तो उसमें दीक्षा जिसके पास से ली जाती है, ऐसे दीक्षा दाता आचार्य कैसे होते हैं, दीक्षा का ग्राहक को देखकर आचार्य जिन दीक्षा से अलंकृत करते हैं, उसके पहले जिस समय वो दीक्षा लेने जाता है उसके पहले परिवार जनों को संबोधन करने का एक विधान अपने यहाँ पर है, वो चरणा योग सूचक चूलिका में। मैं इसलिए उस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि यदि उन गाथाओं की शुरुआत की उन गाथाओं का गुरुदेव श्री का प्रवचन आप पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या वाणी है। देखिए जैन दर्शन में कोई ऐसा नियम नहीं है कि दीक्षा के पहले परिवार जनों से अनुमति लेना चाहिए। वहां अनुमति का मतलब आज्ञा, वहां अनुमति नहीं है, मतलब वहां आज्ञा। आज्ञा मांगना का मतलब क्या, आ माने सब ओर से ज्ञान करा देना कि भैया मैं तो अब वीतरागी जिन मार्ग की आराधना करने के लिए, मुक्ति की आराधना के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और मुक्तिपुरी को प्राप्त करने के लिए ये वीतरागी दिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा है। वो अपने सब परिवार जनों को संबोधन करता है तो वहां पर एक बहुत गजब की बात कही। गजब की बात ये कही कि ऐसा कोई नियम नहीं होने पर भी ये संबोधन वगैरह का विधान क्यों है, उसका बहुत सुंदर कारण दिया। अगर उनके परिवार में कोई ऐसा जीव हो निकट संसारी और उसमें वैराग्य के बीज तो हो लेकिन उसका वैराग्य प्रस्फुटित नहीं हुआ हो, तो इस वैराग्यमय प्रसंग को देखकर उसका वैराग्य भी प्रस्फुटित हो जाए और वो भी यदि इस मार्ग में आगे बढ़े, इस भावना से संबोधन का विधान भी है। और भी बहुत सारी बातें हैं इससे, इसमें बहुत अनेक बिंदुओं से मुनि धर्म की बहुत गंभीरतम सैद्धांतिक आध्यात्मिक उनके आचरण संबंधी उनकी प्रवृत्ति वगैरह सब बिंदु जितने होने चाहिए उन सब बिंदुओं की चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इन सभी ग्रंथियों की जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है कि ये अपने इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को ये सूचना देता हूँ कि इस चरणायुग सूचक चूली का अधिकार के गुरुदेव श्री के प्रवचन हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो अपन लोग अधिक से अधिक उन प्रवचनों का लाभ लें और अपने चित्त में वीतरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है उसको अपन लोग समझने और समझने का प्रयास करें। पहले तो समझने का प्रयास और समझने का प्रयास करने के साथ ही अपने मन में भी इस प्रकार की भावना हो कि हे प्रभु कब वो दिन आवे जब मैं भी ऐसी वीतराग दशा की अपने जीवन में उपलब्धि कर सकूं, ऐसी भावना अपने को भी होनी चाहिए। इसी भावना से अपन लोग चरणायुग सूचक चूलिका ग्रंथ का स्वाध्याय जब करते हैं तो मुनि राजों की सच्चे वीतरागी संतों की अपने को अनेक अनेक प्रकार से उनके उनकी महिमा भाषित होती है कि ये कैसे सिंह वृत्ति के धारी वीतरागी संत होते हैं कि जो जंगल में एकाकी आत्म ध्यान आत्म आराधना में रत रहते हैं। अपन मेरी भावना में बोलते भी हैं ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पर हित के साधन में जो निस्सिजन तत्पर रहते हैं। ऐसा अपन बहुत बहुत प्रकार से उसकी महिमा आती है और अभी हम लोगों ने एक और भी निर्णय किया है वो आपको बता देता हूँ। जरा मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को बता देता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री के लगभग 100 ग्रंथ जो संकलित प्रवचन है और लगभग 9,000-9,500 पूज्य गुरुदेव श्री के कुल प्रवचन है उन प्रवचनों में और संकलित प्रवचन ग्रंथों में मुनि दशा संबंधी गुरुदेव श्री के जो हृदयोद्गार निकले हैं उनका 1008 मान संकलित ग्रंथों में से 1008 और वर्ड टू वर्ड प्रवचनों में से 1008 इस तरह 2 वॉल्यूम उनके वचनामृतों के प्रकाशित होंगे और उसमें 108 अलग अलग आचार्यों ने जो मुनि राजों के संदर्भ में विशेष वक्तव्य दिया है जिससे अपने को उस मुनि धर्म की महिमा अंतर में जागृत हो। और एक बार ये बहुत जल्दी प्रकाशन होने जा रहा है और एक बार और ध्यान में कि जब भी मैं हमेशा जब भी इस विषय पर चर्चा शुरू करता हूँ अभी हमारा व्यवहार चरित्र अधिकार नियम सार का विद्यालय में चला था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब भी हम चरणानुयोग सूचक चूलिका ग्रंथ का स्वाध्याय करें नियम सार का स्वाध्याय करें मूलाचार का स्वाध्याय करें अंगार धर्मामृत का स्वाध्याय करें भगवती आराधना का स्वाध्याय करें और भी मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय करें जब भी हम स्वाध्याय करें तब हमें वीतरागी देव शास्त्र गुरु मुनिराज का स्वरूप कैसा है हमें वो पहचान कर सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय करने का अभिप्राय रहना चाहिए। ये चर्चा करते समय कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि भाई इसमें जहां मुनिराजों की महिमा की चर्चा आई है वहां शीतलाचार पर आचार्यों ने बहुत कड़क भाषा का प्रयोग भी किया है तो अपने को किसी दूसरे को ये देखने की आवश्यकता नहीं कि वो ऐसा करता है या वो ऐसा करता है। अपन ये विचार करें कि इस अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए 4,84,00,000 योनियों में परिभ्रमण करते हुए पंच परावर्तन करते हुए हम लोगों ने भी मैंने आपने हम सब यहाँ जो बैठे हैं जो ऑनलाइन स्वाध्याय सभा से जुड़े हुए हैं हम सब लोगों ने अनंत बार भगवान के समो शरण में गए हैं अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान का उभार प्राप्त किया है अनंत बार बाह्य द्रव्य लिंग धारण किया है लेकिन अपनी आत्म स्वरूप को हम नहीं समझ पाए इसलिए आज भी हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। मैंने वो बात अगर जिनवाणी में कहीं किसी प्रकार से आती है तो हमें किसी दूसरे पर लगाने के बजाय उस बात को अपने जीवन में लगाना चाहिए कि अरे ऐसा ऐसा मैंने अनंत बार किया अष्ट पावर ग्रंथ जब हम खोल के पढ़ते हैं उसमें बात आती है कि अरे जिस समय तू जिन दीक्षा लेने निकला था भले ही वो मिथ्यात्व सहित दीक्षा थी और उस समय तेरी माता की आंख में से जो आंसू बहे थे उन आंसुओं का ढेर इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाएंगे। कितनी बार तूने अपने जीवन में भूत काल की पर्यायों में इतनी बार जिन दीक्षा अंगीकार की यदि उसके पीछे कमंडल के ढेर लगाए जाएं तो सुमेरु पर्वत जितने ढेर लग जाएंगे। ये सब बातें आचार्य भगवान ने कही है वो किसी दूसरे को संबोधन करने के लिए नहीं कही है। सबसे बड़ी बात तो उस बात को हम अपने जीवन में लगाए तो हमने ऐसा अनंत बार किया कि नहीं। और अब यदि अगर हमने इस भव में भी यदि अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा और यदि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझा तो हम अपना जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे। देखो दो बातें समझ लेना कि जब भी दो तरह से मुनि धर्म का जब निरूपण आता है एक बात विशेष ख्याल में रखना हमें मुनि बनने की भावना है
मोक्ष में नहीं जाया जाता और पुण्य प्रकृतियों को लेकर निगोद में नहीं जाया जाता। मोक्ष जाने वाले शुद्धात्मा के लक्ष्य से पुण्य का भी नाम करते हैं तब मोक्ष जाते हैं, और निगोद जाने वाला जीव कोई भी जीव हो सकता है, आप हम सभी कोई भी हो सकता है, निगोद जाने वाला जीव अगर उसके पल्ले में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं तो निगोद जाने और तृत पर्याय का काल पूरा हो गया है तो वो पुण्य प्रकृतियों को संक्रमित करके पाप रूप संक्रमित करके निगोद जाते। तो जहां पर अनंत संसार में परिभ्रमण करने की बात है, परिभ्रमण करने की बात है, उस किस शब्द का प्रयोग किया? देखो अब से आगामी काल में भ्रमण करते हैं उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? अत्यंत फल समृद्ध है ना, तो अनंत कर्म फलों से भरे हुए ऐसे संसार में परिभ्रमण करते। ये बात हमने इस गाथा में पढ़ी, टीका तो बहुत विस्तार से बहुत आपस में पढ़ना, बहुत गहरा मर्म है। तो ये जो बात कहने हैं ये बात किसके लिए लागू पड़ती है? मेरा प्रश्न वही, ये बात आपके और हमारे लिए लागू पड़ती है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। पंडित प्रोडक्ट जी ने बहुत साफ प्रकाशक में लिखा कि जितने भी प्रकार के अज्ञा मिथ्यात्व का हमने निरूपण किया हो अपने में यदि ऐसा दोष हो अपना दोष निकाल लेना, दूसरों के दोष देखकर कृपाई होने के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आचार्य कुंड कुंड की वो शिक्षा याद करना, साधर्मी और परधर्मी से वाद विवाद नहीं करना, समझ में आए तो समझ लेना, जिसकी समझने की जिज्ञासा देखो उससे चर्चा करने का मन बने तो चर्चा कर लेना, अपने को समझ करके अपने स्वरूप में समझ। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज को, जो द्रव्यलिंगी कौन होते हैं, जिनके 28 मूल गुणादि का निरतिचार पालन होता है उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं ना, तब वो लेकिन अंदर में मिथ्यात्मना प्रणाम है, उन्हें भविष्य में क्या फल आएगा ध्यान से सुना, तो क्योंकि अभी भावलिंगी मुनिराज को मोक्ष तत्व कहेंगे ध्यान से सुना, जबकि भावलिंगी संत संबर निर्जरा की मूर्ति है, अभी तो मुनि दशा है ना, तो मुनि दशा तो संबर निर्जरा रूप है, लेकिन संबर निर्जरा का फल क्या आएगा? तो उस संबर निर्जरा का फल मोक्ष आएगा, तो संबर निर्जरा के फल में अति अल्प काल में मोक्ष आने वाला है, तो उस अति अल्प काल के विवेक को ग्रहण करके भावलिंगी संत को अंतर में भावलिंग और बाद में द्रव्यलिंग उसको भावलिंग वहां पे कहा, ऐसे भावलिंगी संत को उन्होंने मोक्ष तत्व कह दिया। तो जैसे यहां पर संबर निद्रा का फल अल्प काल में मोक्ष आएगा, अल्प काल में आने वाले फल का फल को उस अल्प काल के गैप को गौण करके उन्हें मोक्ष तत्व कहा, उसी तरह यहाँ 271 गाथा में मिथ्यात्व का फल अल्प काल में निगोद आता है और उसमें किसी की लिहाज नहीं होती, चाहे हम हो, यानी ये सबसे उत्कृष्ट जीव लिया है संसार तत्व में, सबसे उत्कृष्ट लिया कि यहाँ तक पहुंचने पर भी जीव संसार का अभाव नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या हुआ? तो इससे नीचे के जिनके हृदय में अपन जिनके हृदय में मिथ्यात्व विद्यमान है, जिनकी परिणति में मिथ्यात्व विद्यमान है, वे सब भी संसार तत्व में ही अंतर्भूत होते हैं। ये बात बहुत गंभीरता से समझने योग्य है ना, हम ये समझ अगर क्यों क्यों इस मिथ्यात्व का फल भाई अभी शुभ भाव है, लेकिन शुभ भाव के साथ में मिथ्यात्व है ना, इस मिथ्यात्व का फल अपने अल्प काल में अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं, मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ तो इस मिथ्यात्व का फल अति अल्प काल में निगोद आएगा, और निगोद आने पर ही अनंत फल कर्म फल से समृद्ध संसार दशा की जो बात कही है ना, कोई सत्य संस्कृति क्यों भाई साहब? क्योंकि 2000 सागर की पर्याय तो उसका मान लीजिए पहला भाव भी हो तो पर्याय का, और अंतिम अंतिम काल तक 2000 सागर है, आवश्यक नहीं है कि 2000 सागर प्लस पर्याय में रहे ही। जब की तीव्रता हो जाए ना तो 2000 सागर के पहले भी नंबर आ सकता है। इसलिए अपने को इसमें से क्या शिक्षा ग्रहण करना, तो अरे ऐसा उत्कृष्टतम शुभ भाव करके भी अगर कोई जीव निश्चात परिणाम को नहीं छोड़ने की वजह से, तत्व का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं करने की वजह से अगर निबोध जा सकता है, अनंत संसार में परिभ्रमण कर सकता है, अपन लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान अपने को समझा रहे हैं। और इसके बाद आगे जो आया मोक्ष तत्व, वो मोक्ष तत्व का मैं 5 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। देखिए, जो जीव यथार्थतया पदों का तथा अर्थों माने पदार्थों का निश्चय वाला होने से प्रशांत आत्मा है, और फिर कहते हैं तो अयथाचार, अयथाचार का मतलब होता है अन्यथा आचरण, अयथार्थ आचरण, मुनि पद के योग्य आचरण ना हो वो आचरण नहीं, मुनि पद के योग्य आचरण। भावलिंगी संत का कथन है ना, अंदर में भावलिंग है और बाहर में मुनि दशा के योग्य ही उनका आचरण है। अयथार्थ आचरण से रहित है वह संपूर्ण सामान्य वाला, संपूर्ण सामान्य वाला माने अंतर में 3 दशाएं चौकड़ी का अभाव और बहिरंग में मुनि पद के योग्य जिस तरह की राग की मर्यादा होनी चाहिए उस तरह की मर्यादा। तो अंतर में सामान्यता पूरी है और बाहर में सामान्यता पूरी है। पहले में क्या था कि पहले में अंतरंग में विख्यात था, बाहर में सामान्य का आचरण होने पर भी अंतरंग में विख्यात था, तो विख्यात के फल में वहां आया। तो ये करें संपूर्ण सामान्य वाला जीव अफल अर्थात कर्म फल रहित हुए इस संसार में चिरकाल तक नहीं रहता, अर्थात अल्पकाल में ही मुक्त होता है। अल्पकाल में ही मुक्त होता है का मतलब क्या, देखो साधक दशा से लेकर सिद्ध दशा की यात्रा, साधक दशा तो 4th स्थान में पूरी हो गई, शुरू हो गई, यहाँ तो मुनि दशा की बात चल रही है, तो ये तो और उत्कृष्ट दशा है। तो वो जो साधक दशा से सिद्ध दशा की यात्रा है उसमें अनंत काल तो लगता ही नहीं है भाई साहब, अनंत समय भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा काल है वो मर्यादा में आता, भले 8-10 भाव भी लगे किसी को मर्यादा में आगे। गुरुदेव श्री बोलते थे असंख्य समय में साधक जीव साध्य दशा को प्राप्त करता है। ऐसे भावलिंगी संतों को मोक्ष तत्व कहा, जबकि भावलिंगी संत संवर निद्रा तत्व है, फिर भी संवर निद्रा का फल, संवर निद्रा कारण और मोक्ष कार्य, कार्य का कारण में उपचार करके यहाँ पर उनको मोक्ष तत्व कह दिया। और उधर मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनिराज को वो आश्रम तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व है। क्यों भाई, आपने कैसे कहा पाप तत्व? देखो अगर शुद्धोपयोग नहीं होगा, शुद्ध परिणति नहीं होगी, अकेला शुभोपयोग नहीं हो सकता, शुभ के साथ में नियम से अशुभ होगा। 4th-5th स्थान में तो शुद्ध शुद्ध के साथ में भी शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। गुरुराज की भूमिका में 6th-5th स्थान की भूमिका में शुद्ध और शुभ होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को शुभ और अशुभ होते हैं। ये सारे परिणामों की स्थिति है। तो इन परिणामों का फल जो कि अंत काल में 2000 सागर की तरफ पर्याय पूरी होने पर या उसके पहले भी अनंत संसार का परिभ्रमण का चक्र चालू है। वर्तमान में अनंत संसार भाव में पड़ा है और आगामी काल में अनंत संसार में परिभ्रमण की बात आचार्य ने कही। उनको कहा संसार तत्व माने आश्रम तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, इनका इनको कहा संसार। समर निद्रा तत्व है ना, उनको समर निद्रा तत्व में कार्मिक कारक उपचार करके उनको यहाँ पर मोक्ष तत्व। ऐसे हमारे मित्राजी भावी संत जो साक्षात मोक्ष तत्व स्वरूप जिनको कहा गया है, मोक्ष तत्व ही है वे, ऐसा जिनको कहा गया है, हम उन सभी मित्राजी संतों के चरणों में नमन करते हुए आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। शेष चर्चा पर कल की स्वर्ग
जानन सुख करू।